نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. کامیاب شخصیت کے بارے میں آج ہم جس چیز کو دیکھیں گے وہ کیا ہے عقل کا استعمال امپورٹنس آف وزڈم کیا ہے اور اس کے ہم ڈفرینٹ اینگل دیکھیں گے آپ کے سامنے جو بات رکھوں گی آپ لوگوں کو میرے ساتھ سوچنا ہوگا ایک شخص تھا یعنی دیر واز اے مین ایک آدمی تھا تو وہ گاؤں سے اپنے رشتہ دار کو ملنے کے لیے شہر میں آیا اب جو شہر میں رہنے والا تھا اس نے اس کو اپنا مکان دکھایا بہت اچھا اب وہ بہت حیران کن چیزیں تھی سب دیکھ رہا تھا جب وہ ان کے ریسٹ رومز کو دیکھنے گیا تو بہت ہی حیران ہوا اس کو وہاں نہ تو بالٹی دکھی نہ ڈرم ملا نہ مٹکے ملے کیونکہ عموماً گاؤں جو ہوتے ہیں تو وہاں پہ پانی بھرنے کے لیے اسی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو اپنے دل میں کہنے لگا دیکھو یہ لوگ کتنے ترقی یافتہ ہیں ویسے تو بہت کہتے ہیں کہ ہم بہت ترقی کر چکے اور پانی کے بغیر گزارا کرتے ہیں اب آپ دیکھیے کہ اس کی سوچ یعنی اس نے وہاں ڈرم یا مٹکے یا پانی کے کچھ کنٹینر کو نہ دیکھ کر یہ سوچ لیا کہ یہاں پانی نہیں ہے ٹھیک ہے اس کو وہ نہیں نظر آیا جو ان کے پاس تھا اور اس نے فوراً اس سے یہ رائے دے دی کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ اس چیز کو رکھتے نہیں ہیں یہی مسئلہ بہت سارے لوگوں کا ہوتا ہے کیا اپنی ہی سوچوں میں گم رہتے ہیں اور ان کے نزدیک ان کا اپنا طریقہ کار ہی سب سے بہتر ہوتا ہے نتیجہ کیا نکلتا ہے دوسروں کو کمتر سمجھتے ہیں یہ ہے وہ خرابی جس کا شکار انسانوں کی اکثریت ہو چکی کیا اپنی سوچ میں گم رہنا اپنے طریقے کو بہترین طریقہ کہنا اور دوسروں کو کم سمجھنا اگر میں آپ میں سے کچھ لوگوں سے پوچھوں کیا آپ ایسی تو نہیں ہیں یا آپ ایسے تو نہیں ہیں تو فوراً انسٹنٹلی آپ کہیں گے نو میں تو ایسی نہیں ہوں لیکن حقیقت کیا ہے کہ ہم میں سے بہت سارے نو کہنے والے اسی طریقے کا شکار ہیں اس وقت لوگ جو زندگی گزارتے ہیں نا اس میں بہت ایک بڑی وجہ جو ان کی کامیابیوں کے راستے کی رکاوٹ ہے وہ کیا ہے کہ ہم اپنی سوچ کے اندر رہتے ہوئے جیتے ہیں اپنی رائے کو ٹھیک کہتے ہیں اور دوسرے کو غلط کہتے ہیں اب کوئی آخری کنورسیشن سوچئے کوئی جھگڑا ماں بیٹی کا شوہر بیوی کا بھائی بہن کا یہ جو تلخ کلامی ہوتی ہے نا یہ کیوں ہوتی ہے میں تمہیں ٹھیک کہہ رہی ہوں بھائی میں خود کہہ رہی ہوں اب میں اس طرح بولنا نہیں چاہ رہی جیسے عموماً ایسے وقتوں پہ لوگ بولتے ہیں لیکن اپنی رائے کو درست سمجھنا اور دوسروں کو غلط سمجھنا یہ ایک بہت بڑا پتھر ہے ہماری کامیابی کے راستے کا آج سے ہم نے اس پتھر کو ہٹانے کی کوشش کرنی ہے یہ مجھے پتہ ہے کہ یہ پتھر ہٹانا مشکل بہت ہے پہلے تو پتہ ہی نہیں تھا آج پتہ چل گیا تو یہ پتھر بیریئر بن گیا ہماری کامیابی کے راستے میں تو ہم نے اس کو انشاءاللہ یہاں سے ہٹانا ہے بس ہم دیکھیں کہ اس کی بہت پریکٹیکل اگزامپلز اگر ہم دیکھیں تو ایک امریکن تھا تو وہ ایشیا کے کسی علاقے میں گیا جہاں بجلی نہیں تھی اب لوگوں سے باتیں ہو رہی تھیں تو جو ایشین پرسن تھا اس نے امریکن کو مٹی کے تیل سے جلنے والا فانوس دکھایا اور پوچھا کہ کیا امریکہ میں یہ چیز ہوتی ہے اس نے جواب دیا نہیں بہت تھوڑی بہت کم اب اس نے یہ سوچا جس شخص نے اس کو فانوس دکھایا تھا کہنے لگا دیکھو یہ جس ملک سے آیا نا وہ اتنا غریب ملک ہے کہ وہاں ابھی تک لیمپ ہی نہیں بنے جو مٹی کے تیل سے جلتے ہیں اور اس کو افسوس ہونے لگا ان کی غربت پہ حالانکہ حقیقت کیا تھی کہ وہ جس ملک سے آیا تھا وہاں مٹی کے تیل کی ضرورت ہی نہیں ہے وہاں تو بجلی ہے اور بہت سارے طریقے ہیں جس سے انرجی پیدا ہو رہی ہے تو اس شخص نے اس بندے کو قابل رحم کیوں سوچا اپنی سوچ کی وجہ سے یہی لوگوں کا معاملہ ہوتا ہے ہم اپنی ترقی کے تصور کو خود ہی بناتے ہیں اور اس سے دوسروں کو ناپتے ہیں جو چیز میرے حساب سے ٹھیک ہے وہی ٹھیک ہے ہم इधर उधर नहीं देखते कि हमसे भी ज्यादा कोई अच्छी बात कह सकता है। इसको कहते हैं खुद को अकले कुल समझना। यकीन करें, इस मसले का शिकार मैंने बहुत लोगों को देखा। मेरी किसी से बात हो रही थी, प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगी ताकि इन सारी एग्जांपल्स के साथ आप उसको समझें। और एक खातून थी, जाहिर बात है कि बड़ी उम्र में थी, तो सास या माँ के रुतबे पे थी। कहने लगी कि मेरे घर के जो लोग हैं, जिसकी भी बात उन्होंने अपना मसला किया, वो काम नहीं करती, बेटी कह लें या बहू कह लें, वट एवर, हम तो मसले को समझ रहे हैं ना। कहने लगी कि मैं देर से भी घर जाती हूँ ना, तो काम सारा पड़ा होता है और मुझे घर में भी जाके करना पड़ता है, और काम नहीं करती मेरी बेटी या बहू। मैंने स्पॉन्टेनियसली उनकी बात सुन के कहा, देखें आप माफ़ कीजिएगा, मैं आपको कुछ और कहूँगी। और वो क्या, कि शायद आपको उनका किया हुआ काम पसंद ही नहीं आता और आप उनको करने ही नहीं देती। एकदम मेरी बात सुन के कहने की, आपको किसने बताया, यही बात मेरी बहू कहती है। मैंने कहा इसलिए कि वो बेचारी करती भी होगी ना, तो आपको पसंद ही नहीं आता, आप उसके किए हुए को दोबारा करती हैं। कहती नहीं, मैंने कब उसको रोका है, वो क्यों नहीं कर रही, मैं तो घर पे भी नहीं कर लेती। मैंने कहा वो इसलिए नहीं कर लेती कि आपको उसका पसंद ही नहीं आता, आप जिस तरह अपने हिसाब से करती हैं ना, आप कहती हैं ऐसे ही हो। मैं कहा बताएं ये बात है कि आपको अपने तरीके से काम करना पसंद आता है। करी हाँ ये तो है, देखो सफाई भी करती हैं तो वहाँ पड़ा है और ये पड़ा है और दिस एंड दैट। तो मैंने कहा फिर वो मेरे पास है नहीं इस वक्त आपकी बहू, लेकिन मैं अकेले में अगर उसको किसी वक्त मिलूं या कोई दूसरा उससे मिलेगा ना, तो वो पता है क्या अपना दुख बताएगी, वो भी दुखी होगी। और वो क्या कहेगी, देखो मेरी सास मुझे काम नहीं करने देती और मैं कुछ करती हूँ ना तो उसको पसंद नहीं आता, इसका इलाज क्या है। मैंने कहा आप काम करना छोड़ दें, आप बाहर हैं ना, आप काम कर रही हैं, काम करें, आप खा पी के जाएं, आप घर में देखें भी ना क्या हो रहा है। नहीं मैं कैसे नहीं देखूं, मेरे बगैर तो ये नहीं होता। मैंने कहा आप ये बताएं कि जब आप घर में नहीं होती हैं, कहीं पाकिस्तान जाती हैं, कहीं दूसरी जगह, सूरज निकलता है, चांद निकलता है, सितारे होते हैं, सब होता है ना, तो सब हो जाएगा, आपने हमेशा नहीं रहना। तो ये है वो मसला जो मैंने इस वक्त अपना ही मसला बयान कर दिया हो बेशक, लेकिन ये बहुत सारे लोगों का मसला है कि जो लोग दूसरों को काम करने का मौका ही नहीं देते, उसकी वजह क्या है, उनका ये ख्याल होता है कि मेरा तरीक़ाकार मिसाली है। कुरान पाक में एक आयत है जिसमें फिरौन ने ये दावा किया था कि मैं तुमको बुलाता हूँ भलाई के रास्ते की तरफ, और अपने आप को कहता था कि मेरा तरीका क्या है, तरीकतुल मुसला, मेरा तरीका बेमिसाल है। यानी वो कल्चर जिस पे अल्लाह ने डुबो दिया, इतना बुरा कल्चर था ना कि जिस पे अल्लाह ने उसको डुबोया, वो अपने उस लाइफस्टाइल को कहता था ये मिसाली तरीक़ेकार है। तो हम सब अगर ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, अपने आप को पहचानिए, यकीन करिए अगर ये पत्थर आपके रास्ते से हट गया ना, तो पीछे से कामयाबी आपका रास्ता देख रही है। आज से अपनी ज़िंदगी से इस ख्याल को निकाल दें कि जो मैं कर सकती हूँ वो दूसरा नहीं कर सकता। ऐसे लोगों के एक मखसूस जुमले भी होते हैं जो बोलते हैं वो, हम तो ऐसे करते हैं, हमारे घर तो यूं पकता है, हमारे ख़ानदान में तो ऐसा होता है, हमारी तो ये रस्में, इस तरह के जुमले होते हैं। आप अपनी गुफ्तगू में से ये जुमले ढूंढेंगी ना, आपको बहुत सारे मिलेंगे। हम तो हमारे लोग तो, ये हम का जो लफ्ज़ है ना, यही बंदे को डुबो देता है। मेरे मुझे तो किसी का खाना नहीं पसंद, मेरे मियाँ तो किसी के हाथ का नहीं खाते, मेरे बच्चे तो बस मेरे बगैर किसी से यानी बहलते ही नहीं, नहीं मैं कुछ नहीं हूँ। और ऐसे लोग जो होते हैं ना, ये हर फन मौला बनने की कोशिश में वन मैन शो पेश करते हैं। अगर आप में से कोई वन मैन शो आज तक कर रहा था ना, आज से तौबा कर लें। इंसान कमज़ोर है, वो सब कुछ नहीं कर सकता, इंसान को हमेशा दुनिया में नहीं रहना, कल हमने जाना है इस दुनिया से। ये कोई अकलमंदी नहीं कि आप जाने तक अपनी लाइन और अपनी कुर्सी को छोड़े ही ना, और आप अपने घर वालों को मौका ही ना दें काम का। अकलमंद कौन है उसके सामने दूसरे काम करने लगे, दूसरों को मौका दीजिए, इंशाल्लाह ताला आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर बहुत बेहतरियां पैदा होंगी। एक और मिसाल आ गई सामने, आपको पता है कि जब ऑटोमोबाइल यानी गाड़ी ईजाद हुई, तो उस ज़माने में अमेरिका का एक देहाती था, बहुत जैसे लैंडलॉर्ड था, तो वो न्यूयॉर्क गया, उसने वहां देखा कि जो गाड़ियां अभी बिल्कुल बुनियादी मरहले की थी, आपने शायद किसी पुरानी मूवी में भी देखा हो, तो घोड़ा गाड़ी से बहुत मुशाबत रखती थी। आगे हल्के से उसकी ऐसी कोई होती थी चीज़, और पीछे से बिल्कुल घोड़ा गाड़ी या टांगे की शक्ल की होती थी और बहुत तेज़ी से चल रही थी। उसने लोगों से पूछा कि ये टांगा तो है लेकिन ये इतने तेज़ कैसे चल रहा है। लोगों ने बताया कि इसमें हॉर्स पावर मशीन लगी हुई है। अब ये शख्स कहेगा, अच्छा ये मशीन कहाँ से मिलती है? अच्छा, पूछ के मशीन लेने किसी फैक्ट्री में पहुंच गया। अब वहां से एक उसने हॉर्स पावर मशीन ख़रीदी और अपने गांव गया। अब इस मशीन को अपनी अकल और समझ के मुताबिक अपनी रियल घोड़ा गाड़ी जो थी उसमें फिट कर दिया। वो गाड़ी घोड़ा गाड़ी जैसी लगती थी लेकिन इसने अपनी रियल में डाल दिया, और उसका ख्याल था कि अब मेरा भी ये घोड़ा और टांगा जल्दी चलने लगेगा, जबकि मशीन लगाने से कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। जिस तरह घोड़ा चल रहा था वो वैसे ही चलता रहा। अब वो शख्स इतना परेशान हुआ कि शहर वालों की गाड़ी तो इस मशीन के लगने से तेज़ चली और मेरी तेज़ नहीं चली। फ़र्क किस बात का है कि वो बंदा उस गाड़ी को पूरी तरह ऑब्ज़र्व नहीं कर सका। उसने उस हॉर्स पावर मशीन को लगाने को तो देख लिया लेकिन उसने ये नहीं देखा कि उसके घोड़ा गाड़ी का निज़ाम और शहर में चलने वाली गाड़ी का निज़ाम फ़र्क है। यही कैफियत उन लोगों की है आज भी, जो वेस्ट की चीज़ों को ईस्ट की चीज़ों में लगाना चाहते हैं। हम बड़े मुल्कों या बड़ी ताकतों को जब देखते हैं और वहाँ के कुछ ख़ास निज़ाम सिलसिले देखते हैं तो हम अपने मुल्कों में उनको अप्लाई करना चाहते हैं। हम चाहते हैं अपने मुआशरे में उनको फिट कर दें, फिट होते नहीं हैं। ये दो मुख्तलिफ़ मुआशरे हैं, ये दो मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हैं। इस्लाम का एक अपना मिजाज है। जब हम नॉन मुस्लिम कल्चर की कुछ चीज़ें अपनी शादियों, अपनी खुशियों, अपनी गमियों, अपने लाइफस्टाइल में लगा लेते हैं तो कामयाबी की बजाय नुकसान होगा। इसके लिए ज़रूरत है कि हम अपने आप को चेक करें। आप किसी की भी कोई अच्छी चीज़ लें ना तो उसको इस्तेमाल करने से पहले अक़ल इस्तेमाल करें। अक़ल के इस्तेमाल के बग़ैर कभी भी किसी दूसरे की चीज़ का फ़ायदा नहीं हो सकता। मसला आप देखिए कि आपको मिसाल दी जाती है, चलिए मैं आपको एक बहुत सिंपल सी मिसाल देती हूँ कि आपको क्लास में बताया जाता है कि आपको अपने हस्बैंड को खुश रखना है, ठीक है? आप फ़ौरन सोच लेंगे अभी से देख वो खुश नहीं होते, लेकिन चले आपने रखना है। आप कहेंगे अच्छा जी हम कैसे रखें? तो मैं आपको कहूँ कि आप देखिए, जब आपके शौहर घर में आए तो आप उनको बहुत, आप पहले बहुत अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े पहने और बहुत अच्छे अपने आप को सेट करें, फिर शौहर आए तो उनको स्माइल दें और उनका ब्रीफकेस ले लें प्यार से और उनको उनके साथ ज़रा मोहब्बत वाली बातें करें। लेट्स सी, मिसाल दे रही हूँ। अच्छा, अब इत्तेफाक़ क्या हुआ कि आपने कहा अच्छा चलो ऐसे मियाँ खुश होते हैं, मैं भी करूँगी आज। आप ये सारे काम कर रहे थे, इतने में आपको मियाँ का फ़ोन आ गया, कोई बुरी खबर सुना दी उन्होंने, पता भी चल गया आपको मे बी जॉब से उस दिन ले ऑफ हो गए या सो ऑन, कोई भी इस तरह का मामला हुआ। अब क्या हुआ? आप कह रहे नहीं आज तो हमें उस्ताद ने कहा था कि हमने शौहर को खुश करना है, आप स्टिल फिर वही काम करें, बड़ा शोक फैंसी किस्म का सूट पहने, खूब अच्छा इतर परफ्यूम लगाएं और बड़ी अदा के साथ मियाँ का वेलकम करें, और वो बेचारा परेशान है, उसकी रोना बना, हो सकता है कोई बुरी खबर ही उसने सुन ली हो, किसी की डेथ की खबर हो, और आपके नहीं सॉरी मुझे तो आज आपको खुश करना है और आप बैठे और मैं आपके नखरे देखती हूँ, क्या ये सही फैसला होगा? बात तो आपने ठीक की जो आपको कहा गया शौहर को खुश रखो, लेकिन गलती क्या हुई? आपने मेरी कही हुई बात पर अपनी अकल को इस्तेमाल नहीं किया। ये है वो चीज़ जिसकी इंसानी शख्सियत में बहुत ज़रूरत है, अकल का इस्तेमाल। देखिए अकल इंसान के बड़े बड़े मसलों को हल कर देती है। एक दफ़ा क्या हुआ, एक बिल्डिंग ज़ेर तामीर थी, उसकी गैराज की दीवार में एक सुराख था। आप सोचिए ज़रा अपने इमेजिनेशन में, अब एक परिंदे का बच्चा वो सीमेंट की इस दीवार के अंदर सुराख में गिर गया, यानी ऊपर से गिरा, वो एक होल पिलर टाइप बनी थी वो उसमें नीचे चला गया। अब नीचे चला गया तकरीबन 30 इंच गहरा, 4 इंच लंबा, 1.5 इंच चौड़ा था, 34 1/2 इंच। अब क्या हुआ कि जो वहाँ काम कर रहे थे उनको बड़ा रहम आया, वो परिंदे का बच्चा अंदर बोल रहा था, चू चू कर रहा था, करें क्या, निकाले क्या, वो अंदर कैसे जाए और करें क्या। इतने में क्या हुआ कि एक 10 साल का बच्चा था वो वहाँ किसी काम से गया। अब सब कह रहे देखो वो अंदर इतना गहरा गिरा हुआ, हम कैसे उठाएं, हम जा नहीं सकते, इसको पिलर को उल्टा कैसे करें, अब क्या करें। खैर वो 10 साल का बच्चा, उसने जब ये मंजर देखा थोड़ी देर गौर किया, अपने दिमाग को लड़ाया, कहने लगा, तुम लोगों के पास रेत है? कहा, रेत तो है। कहा, लेके आओ। अब वो रेत लाया ना, तो उसने क्या किया कि उस पिलर के अंदर एक साइड पे उस रेत को नीचे गिराना शुरू कर दिया। जब नीचे रेत जाती जाती गई ना, तो वो जो नीचे बेस थी ना, बेसमेंट में जमा होती गई। जूं ही रेत नीचे जमा होती गई, तो वो परिंदे का बच्चा ऊपर उठता आया। हाँ, तकरीबन 1 घंटे की कोशिश के बाद वो इतनी रेत उसमें डाली कि वो बिल्कुल पिलर का जो सुराख था वो ऊपर तक रेत आ गई, और उन्होंने वहाँ से उस बच्चे को निकाल लिया। ये है अकल का इस्तेमाल। जहन के ज़रिए बहुत सारे मसलों का हल हो जाता है। उसने अकल को इस्तेमाल किया, अल्लाह ताला ने उसके मसले को हल कर दिया। एक बड़ा मशहूर वाक्य हम सुनते हैं ना हदीस में, कि एक शख्स प्यासा था, कुएं में गया, पानी पिया, डोल नहीं था, नीचे उतरा, पानी पी के आ गया। बाहर निकला तो देखा कि एक कुत्ता प्यासा था। उसको लगा कि जैसे मुझे प्यास लग रही थी, इसको भी लग रही होगी, चलो इसको भी पानी पिलाऊं। लेकिन कैसे पिलाऊं? अब इसके लिए उसने सोचा तो ख्याल आया कि अपना मोज़ा उतारूं। उस दौर में चमड़े के मोज़े होते थे। उसने उस मोज़े को मुंह में दबाया और कुएं के अंदर उतरता गया, उसमें पानी भरा और ऊपर आके उसको पिला दिया। और आता है कि अल्लाह ताला ने उसको इस नेकी की वजह से बख्श दिया। किस चीज़ ने उस बंदे को यहाँ तक पहुँचाया? अकल के इस्तेमाल ने। तो लिहाजा अकल अल्लाह ने दी, इसको अकल सलीम बनाना है, इसको अच्छे कामों में इस्तेमाल करना है। देखिए, अकल बड़ी अय्यार होती है, बड़ी होशियार होती है। ये अकल दूसरों को गलत, दूसरों को नुकसान देने के काम भी आ जाती है। लेकिन अकलमंदी क्या है कि इंसान इस चीज़ को कबूल करके अल्लाह की दी हुई नेमतों को अल्लाह के बंदों के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करे। अल्लाह के नबी के दौर में हिजरे अस्वद का मसला हुआ था, क्या करें, लड़ाई होने लगी, हर कबीला कहता था हम उठाएंगे। अल्लाह के नबी ने अकल का इस्तेमाल किया, कोई वही नहीं उतरी, जस्ट विजडम यूज़ की। कहा एक चादर लाओ, चादर लाई गई, उसके बीच में वो पत्थर रखा। कहा सारे कबीले के जो लोग हैं वो चारों तरफ से कोनों को पकड़ लें, और सबका हाथ डल गया, सब मुतमईन, सब खुशी। आप भी अपने घरों के मसले, बच्चों के मसले, ख़ानदानों के मसले अकल के इस्तेमाल से हल कर सकती हैं। अकल नहीं होती ना तो बंदा सारी ज़िंदगी, अकल की कमी बंदे की ज़िंदगी को मुश्किलात से भर देती है, और जब अकल का इस्तेमाल किया जाता है अच्छी तरह तो इंसान की ज़िंदगी अच्छी होती है। आप देखिए, क्या जितना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, जितनी तरक्कियां हो रही हैं, जो कुछ भी मिलता है हमें, वो सब किस वजह से? अकल के लिए ना। बड़ी बड़ी इमारतें बनी हुई आप देख के हैरान हो जाते हैं, मादनियात निकल रही हैं ज़मीन से, लोहा और क्या कुछ निकलता है, अकल का इस्तेमाल है ना। तो लिहाजा अकल अल्लाह ताला की दी हुई एक बहुत बड़ी नेमत है, और ये अकल मेयार भी है। किस बात का? क्या आप अल्लाह को इससे पहचाने? जितना अकल का सही इस्तेमाल करेंगे, उतना ही आप अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों का सही इस्तेमाल करेंगे, और उस वक्त आप अल्लाह ताला को पा लेंगे। चंद कोटेशंस आपके सामने रखूंगी कि अकल होती क्या है। हंसी आ रही है खुद ही सोच के, कि हमारे यहाँ एक बड़ी मशहूर कहावत है कि अकल बड़ी के भैंस, आपने भी सुनी होगी। और बाज़ लोग कह देते हैं भैंस बड़ी है, क्योंकि अकल तो देखी नहीं होती है। तो अकल को कोई पा नहीं सका, कब तक और कैसी अकल है। तो मैं चंद रिवायतें रखूँगी आपके सामने अकल के बारे में। एक रिवायत क्या है कि किसी शख्स के इस्लाम को उस वक्त तक बुलंद मर्तबा ना समझो जब तक कि उसकी अकल की गिरफ्त को ना पहचान लो, यानी उसको अपनी अकल पे कितना काबू है। तो गोया के अकल क्या है कि इंसान के अंदर सेल्फ कंट्रोल हो। इसी तरह अबू ज़करिया कहते हैं कि जन्नत में हर मोमिन अपनी अकल के मुताबिक लज्जत हासिल करेगा, यानी अकल होगी तो जन्नत में लज्जतें भी बढ़ जाएंगी। इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं अकल इंसान की एक तबई सिफत है जो इसकी ज़ात के साथ गढ़ी हुई शय है, यानी अल्लाह ताला ने इसकी तबीयत में ये चीज़ डाल दी है, और जैसे वो कहते हैं ना इनग्रेव हुई हुई है इंसान की शख्सियत में। इसी तरह महासबी एक बुज़ुर्ग हैं, वो कहते हैं कि अकल एक नूर है। एक तारीफ़ क्या है कि अकल एक कुव्वत है जिसके ज़रिए से मालूमात की हकीकतों को जुदा जुदा किया जाता है। एक अराबी से अकल के बारे में पूछा गया, उसने जवाब दिया अकल तजुर्बात का निचोड़ है जो बतौर गनीमत हाथ लग जाए। देखिए, अरबी था, बात कितनी खूबसूरत की, दोबारा बोलती हूँ, आप नोट कर सकते हैं کہتا ہے کہ عقل تجربات کا یعنی ایکسپیرینسز کا ایکسٹریکٹ ہے جو بطور غنیمت ہاتھ لگ جائیں. ٹھیک ہے, تو عقل فرق کو سمجھنے کا نام ہے. اسی عقل کا صحیح استعمال ہو اور دل میں اللہ کا خوف ہو تو تقویٰ بڑھنے لگتا ہے. انسان تقویٰ کی منزلیں طے کرتے کرتے پھر احسان کے درجوں پہ پہنچتا ہے, اور یہی کیفیت پھر حکمتوں کا سرچشمہ بن جاتی ہے جس سے واقعی علم اور دانش کے سوتے پھوٹتے ہیں. تو آج کے اس سیشن میں ہم نے جو بات سیکھی, پہلی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہی درست سمجھنا اور دوسرے کو غلط سمجھنا, اس عادت سے اپنے آپ کو نکالنا ہے. دوسری بات سیکھی کہ میں ہر ایک کی ضرورت ہوں, میرے بغیر کام نہیں چل سکتا, اس سوچ کو نکال دیں. اپنے آپ کو چینلائز کیجئے, اپنی خوبیوں کو دیکھیں, جو سب سے زیادہ آپ کے اندر اچھی چیز ہے نا وہ کیجئے, باقی کام دوسروں کو کرنے دیں. کیونکہ جب ہم ساروں کے کام کرتے ہیں نا تو کوئی بھی ٹھیک نہیں کرتا. بس اگر آپ کو کھانا اچھا پکانا آتا ہے نا اور گھر میں اور لوگ بھی کام کرنے لیں تو آپ کھانا پکانے میں محنت کر لیں, باقیوں کو آپ کسی اور کام پہ لگا دیں. آپ کو پڑھنا آتا ہے تو آپ پڑھیے اور باقی آپ کی صفائی کا کام کوئی اور کر لے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب زندگی گزارنے کی طرف قدم بقدم آگے بڑھاتا جائے, اور اس مختصر سے وقت میں ہم زیادہ سے زیادہ کام کر سکیں, اپنی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو ڈسکور کر سکیں. اللہ تعالیٰ میری بھی اور آپ کی بھی مدد فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.